بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ये सूरत का नाम है सूरतुल फील. फील अरबी जुबान में हाथी को बोलते हैं, एलिफेंट. इस सूरत का नाम सूरतुल फील कैसे हो गया तो समझ में ये आता है कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने हाथी वालों का किस्सा बयान फरमाया है. वो पूरा किस्सा आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि वो हाथी वालों का किस्सा क्या है. ये सूरत मक्की है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए उससे पहले अल्लाह ताला ने उतारी थी. ये मौजूदा कुरान के नुस्खे में इस तरतीब में 105 नंबर की सूरत है, लेकिन उतरने की जो तरतीब है जिसको नुजूल की तरतीब कहते हैं उसमें सूरे काफिरून के बाद और सूरे फलक से पहले 19 नंबर के ऊपर ये अल्लाह के यहाँ से उतारी गई है. अल्लाह का घर काबा, उस पर हमला करने के लिए यमन से हाथी वालों की एक जमात आई थी. अल्लाह ने उन हाथी वालों को तबाह और बर्बाद कर दिया. उसका वाकिया इस सूरत में बयान किया गया है. ये किस्सा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक से 50 या 55 दिन पहले का है. इस किस्से में एक तरफ अल्लाह की कुदरत का जबरदस्त नमूना है कि इतने बड़े लश्कर को, इतने बड़े बादशाह को अल्लाह ताला ने कैसे हरा दिया, कैसे नाकाम कर दिया. साथ ही में ये किस्सा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंचे मकाम और अजमत का भी बतलाने वाला किस्सा है. गोया हुजूर की विलादत दुनिया में हो रही है, पैदाइश हो रही है, उसकी तरफ एक गैबी इशारा हो गया और ऐलान हो गया कि इस दुनिया में एक अजीम चीज पेश आने वाली है और वो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश है. पहले सूरत का तर्जुमा देख लेते हैं. अल्लाह ताला के नाम से मैं शुरू करता हूँ जिस अल्लाह की रहमत सब के लिए है, जो बहुत ज्यादा रहम करने वाले हैं. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हमारे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या बर्ताव किया? क्या अल्लाह ताला ने उन हाथी वालों की तमाम चाल और साजिशों को बेकार यानी ज़ाये और बर्बाद नहीं कर दिया था? और उनके ऊपर हवा में उड़ने वाले यानी परिंदों की बहुत सारी टुकड़ियां भेजी थी जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंकते थे। अंजाम ये हुआ कि उन हाथी वालों को अल्लाह ताला ने खाए हुए भूसे की तरह पामाल और बर्बाद कर दिया। यहां पहले एक बात समझा दूं, सूरत में अबाबील परिंदे की बात फरमाई गई। उर्दू में और हमारी यहाँ गुजराती में एक छोटे से परिंदे को अबाबील कहते हैं, वो यहाँ मुराद नहीं है। ये एक खास किस्म के छोटे छोटे परिंदे थे जो कबूतर से छोटे थे, समंदर की तरफ से आए थे, लाल और हरे रंग के थे, हरेक के पास तीन तीन कंकर थी, एक कंकर चोंच में और जो दो पंजे होते हैं पंजों के अंदर एक एक कंकर थी। और ये परिंदे इससे पहले कभी देखे नहीं गए, दुनिया वालों ने कभी नहीं देखे, और समझो के बाद के अंदर भी ऐसे परिंदे कभी देखे नहीं गए। और ये अल्लाह की तरफ से एक अजीब और गरीब परिंदों की शक्ल में लश्कर आया था जिसने इन हाथी वालों को बर्बाद कर दिया। एक बात हमेशा जहन में रखो जो कुरान की एक आयत में है, वमा यालमु जुनूद रब्बिक इल्ला हु। अल्लाह ताला का लश्कर क्या होता है उसको अल्लाह ही जानते हैं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ऐसे छोटे छोटे परिंदों को अल्लाह ताला ने लश्कर बना दिया और उसके जरिए से एक बहुत बड़ी फौज आर्मी को अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। ये अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह की शान है। एक लफ्ज समझो, मौजीजे का लफ्ज तो हम सुनते रहते हैं, जिसको हम गुजराती में समझने के लिए चमत्कार भी बोल सकते हैं। अल्लाह ताला अपने नबी के सच्चा होने के लिए अजीब अजीब चीजें उनके हाथ पर जाहिर फरमाते हैं, उसको अरबी में उर्दू में मौजीजा कहते हैं, चमत्कार कहते हैं। नबी जब अपने नबी होने का अल्लाह की तरफ से ऐलान करे, लोग उनको पूछते हैं कि आप सच्चे हैं तो कोई दलील लाओ, तो नबी अपनी सच्चाई के ऊपर अल्लाह की तरफ से जो चमत्कार जो अजीब और गरीब चीज दिखलाते हैं वो मौजेजा है। ये मौजेजा ऐसी चीज होती है कि जो नबी के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन एक दूसरी बात भी समझो, नबी की नबूवत के ऐलान से पहले बल्कि नबी के पैदा होने से भी पहले बाज मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐसे ऐसे वाकिए निशानियां जाहिर फरमाई जो मौजजे के जैसी होती है, और वो एक निशानी होती है कि अब अल्लाह के कोई बड़े नबी दुनिया में आ रहे हैं। ऐसी चीज को मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन अरहास कहते हैं। अरहास ये जमा का सेगा है, रहस वाहिद है, अरहास बहुवचन, रहस एक वचन। रहस उस पत्थर को कहते हैं जो इमारत बनाते वक्त पर पाये में खड्डे में सबसे पहले रखी जाए, जिसको संगे बुनियाद कहते हैं, फाउंडेशन का स्टोन कहते हैं। उसको रहस्य कहते हैं। ये अरहास एक खास चीज है, गोया ये हाथियों वाला किस्सा कि अल्लाह ताला की तरफ से एक अरहास की शक्ल था कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का ऐलान हो रहा था। अब इस किस्से को जरा अच्छी तरह समझो। ये सूरत तो हम लोग नमाज में पढ़ते ही रहते हैं, इसमें कौन सा हाथियों वाला किस्सा है, तो उसको समझने के लिए पूरा एक इतिहास सुनना पड़ेगा, हिस्ट्री सुननी पड़ेगी, पूरी तारीख समझनी होगी। यमन दुनिया के अंदर एक मुल्क है जो इस वक्त के सऊदी अरबिया के पड़ोस में है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले वहां हिमियर का एक बादशाह हुकूमत कर रहा था और ये लोग मुशरिक थे। हिमियर खानदान का जो आखिरी बादशाह वहां हुआ उसका नाम ज़ुनुआस है। उस जमाने में हक परस्त लोग, सच्चाई वाले लोग, सच्चे दीन वाले लोग नसारा और ईसाई थे। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, आसमानी किताब इंजील को मानने वाले, एक अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे। तो उस मुशरिक ज़ुनुआस बादशाह ने ये सच्चाई पर चलने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों पर बहुत जुल्म किया, बड़ी बड़ी खंदक खुदवाई, उसमें आग भरी। सूर्य अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बि असहाबिल फील चालू हुई है। हाथी वालों का किस्सा आधा सुनाया गया था, अब बकिया आधा किस्सा सुनाया जाता है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा वजीह बनाया था, बड़ी पर्सनालिटी ऊंची अता फरमाई थी। और जाहिर बात है कि हुजूर के दादा जान थे, इसीलिए अल्लाह ने उनको ऐसा बारौब बनाया था। जब दादा अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे तो देखकर अब्रहा बादशाह फौरन अपने तख्त से नीचे उतर गया और दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ बाजू में बैठ गया और जबान का मसला था तो ट्रांसलेटर को बुलाया, भाषांतर करने वाले को, तर्जमा करने वालों को, और कहा अब्रहा बादशाह ने कि दादा अब्दुल मुत्तलिब को पूछो कि वो क्यों आए हैं, मेरे पास आने का क्या मकसद है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब में फरमाया, मेरी जरूरत तो बस इतनी है कि मेरे ऊंट जो तुम्हारे लश्कर ने पकड़ लिए हैं, मैं उनको छोड़ाने के लिए आया हूं। अब्रहा बादशाह कहने लगा दादा अब्दुल मुत्तलिब को कि जब मैंने आपको पहली मर्तबा देखा तो मेरे दिल के अंदर आपकी बड़ी इज्जत आ गई, बड़ा मकाम और बड़ा रुतबा आ गया, लेकिन मैंने आपकी बात सुनी तो मेरे दिल के अंदर से वो सारा रौब खत्म हो गया, इसलिए कि आप तो मुझसे सिर्फ 200 ऊंट की बात कर रहे हैं। हालांकि आपको मालूम है कि मैं आपका काबा, जो आपका दीन है, उसको तोड़ने के लिए आया हूं, तो आप काबा के लिए तो कोई बात ही नहीं करते, और अपने ऊंट की बात कर रहे हैं। जब अबरहा बादशाह की ये बात सुनी तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, अजीब व गरीब जवाब दिया कि अबरहा बादशाह, ऊंटों का मालिक तो मैं हूं, इसीलिए मुझे अपने ऊंटों की फिक्र हुई, काबा का मालिक मैं नहीं हूं, ये तो बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, इस काबा के मालिक तो बहुत बड़ी एक जात है, अल्लाह की जात, वो अल्लाह अपने घर की हिफाजत करेंगे और हिफाजत करना जानते हैं। कैसा अजीब व गरीब जवाब दिया, कितना प्यारा जवाब दिया। दादा अब्दुल मुत्तलिब के इस जवाब के ऊपर एक लतीफे जैसा सच्चा किस्सा याद आया। जिस वक्त मैं दारुल इफ्ता पढ़ता था तो एक जगह से हमारे हजरत अकदस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातहुम के पास एक बड़ी उम्र के भाई एक सवाल लेकर आए। वो एक मस्जिद के मुतवल्ली थे और मस्जिद की किराए की दुकानें भाड़ूतों को दे रखी थी। अजीब बात हुई कि मस्जिद को बढ़ाना था तो किराएदारों को कहा तो मुसलमान किराएदार मस्जिद की दुकान खाली नहीं कर रहे हैं। उनको समझाया गया कि भाई मस्जिद बड़ी करनी है, फिर भी वो खाली करने तैयार नहीं। तो वो बड़े मियां फतवा लेने आए थे कि इस तरीके से मुसलमान किराएदार मस्जिद की दुकान खाली नहीं करते और पैसे मांग रहे हैं खाली करने के, तो इसका शरीही मसला क्या है। जाहिर बात है कि इस तरह किराए की चीज खाली करने के लिए पैसे मांगना शरीयत की नजर में बिल्कुल जायज नहीं है। वो बड़े मियां बड़ी उम्र के आदमी बोलने में भी बड़े बेतकल्लुफ थे, बात करते करते हजरत मुफ्ती साहब को अर्ज करने लगे कि हजरत, अब तो मैं उनको वही बात कहूंगा जो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा को कही थी कि मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह अपने घर की हिफाजत करेंगे, अगर तुम खाली नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से पकड़ आएगी, वबाल आएगा। का दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जो कहा था वो मैं अभी दुकान पर कब्जा किए हुए भाड़ूतों को कह दूंगा, किराए वालों को कह दूंगा। बहरहाल आज बहुत सी जगहों के ऊपर ये सूरत हाल है, अल्लाह ताला लोगों को सही समझ अता फरमाए। जब अब हम असली किस्से पर आते हैं, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ये बात कही तो अब रहा बादशाह ये घमंड में तकब्बुर में कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा खुदा काबा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। बाज मर्तबा इंसान के दिल में तकब्बुर आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो वो अल्लाह के सामने भी ऐसी बेअदबी और गुस्ताखी की बातें बोलने लगता है। अल्लाह हम सबको हिफाजत में रखे। दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ कुरैश के दूसरे सरदार लोग भी गए थे। उन दूसरे सरदारों ने अबरहा बादशाह को फिर समझाया कि पूरा तिहामा स्टेट, तिहामा एक पूरे सूबे का स्टेट का नाम है, पूरे तिहामा के अंदर जो कुछ फल फ्रूट अनाज पैदा होता है उसकी एक तिहाई, 1/3, एक तृतीयांश हम हर साल बतौर खराज टैक्स के तौर पर तुझको दे देंगे ادا کرتے رہیں گے. بس تو اللہ کے گھر پر ہاتھ مت چلا, اللہ کے گھر کو توڑ مت. یہاں تک انہوں نے درخواست کی, لیکن اب رہا بادشاہ گھمنڈ میں بھرا ہوا, اس نے ماننے سے انکار کر دیا. دادا عبد المطلب جو گئے تھے, ابرہا نے ان کو ان کے اونٹ واپس کر دیے. دادا عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے, اور واپس آنے کے بعد جو کام کیا وہ کام اصل سمجھنے کا ہے, اصل نصیحت اور عبرت ہے. دادا عبد المطلب مکہ آئے, حرم شریف گئے, کعبہ شریف کے پاس پہنچے. کعبہ شریف کے دروازے کا حلقہ ہینڈل پکڑا اور دعا میں مشغول ہو گئے, اور قریش کی ایک بہت بڑی جماعت دادا عبد المطلب کے ساتھ تھی. سب نے اللہ کے سامنے رونا اور دعا کرنا شروع کر دیا, اے اللہ ابرہا بادشاہ کا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, اے اللہ آپ اپنے گھر کعبہ کی حفاظت فرما لیجئے. بہت روئے, بہت دعائیں کی, بس یہ ہے اصل کرنے کا کام. آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, ہم اللہ ہی سے کہیں گے, اللہ ہی حفاظت میں رکھے, امان میں رکھے, عافیت میں رکھے, تندرستی میں رکھے, اور ہر طرح کے فتنوں سے, فتنوں سے, مکاروں سے, بیماریوں سے اللہ تعالی سلامت رکھے. دعا سے فارغ ہونے کے بعد دادا عبد المطلب مکہ کے دوسرے لوگوں کو لے کر کے مکہ چھوڑ کر باہر نکل گئے. مکہ کے آجو باجو جو پہاڑ ہے ان پہاڑوں کے اوپر چلے گئے. دادا عبد المطلب کو اور مکہ والوں کو یقین تھا کہ اب رہا بادشاہ کے لشکر کے اوپر اللہ کی طرف سے ضرور عذاب آئے گا. اور دادا عبد المطلب واقعتاً انہوں نے صحیح کام کیا, اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ ابرہا بادشاہ سے مقابلہ کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے, اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی ضرور حفاظت فرمائیں گے اور اللہ کا عذاب آئے گا. جب دادا عبد المطلب مکہ کے لوگوں کو لے کر پہاڑیوں پر چلے گئے, صبح ہوئی, ابرہا بادشاہ نے کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کی. اس کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا, اس ہاتھی کو اس نے آگے چلنے کے لیے تیار کیا. نفیل ابن حبیب جس کو ابرہا نے گرفتار کر لیا تھا, جو قبیلہ خشعم کے سردار تھے اور وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے, وہ چپکی سے ہاتھی کے پاس گئے اور اس ہاتھی کا کان پکڑا اور ہاتھی کے کان میں یوں کہا کہ اے ہاتھی, تو جہاں سے آیا ہے وہاں صحیح سالم چلا جا. یہ نفیل کہہ رہے ہیں, ہاتھی کو کہہ رہے ہیں, ہاتھی کا کان پکڑ کے کہہ رہے کہ تو جہاں سے آیا ہے وہاں صحیح سالم چلا جا, اسی لیے کہ تو اللہ کا امن والا شہر مکہ میں ہے. مکہ کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ امن والا شہر مکہ میں تو آیا ہے, इतनी बात कह करके नुफेल ने हाथी के कान छोड़ दिए। देखो खुदा की कुदरत, जानवर भी बात को समझते हैं। उसके बहुत सारे वाकियात हैं कुरान में भी, हदीस में भी, और इतिहास और तारीख की किताबों में भी। जब नुफेल की ये बात सुनी तो सबसे बड़ा हाथी बैठ गया। हाथी चलाने वाले जो होते हैं उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथी अपनी जगह से हिला भी नहीं। बड़े बड़े हथियार से उसको उठाने की कोशिश की, मारा, फिर भी वो हाथी नहीं उठा। देखो मुसलमान भाइयों, एक हाथी जैसे जानवर को भी अल्लाह ने कैसी पहचान अता फरमाई। वो मक्का को समझ रहा है, काबा को समझ रहा है, और अल्लाह के घर का एहतराम वो जानता है। ऐसी किताबों में ये इस तरह की बातें आई है, हमने सुनी है कि पहले जब हरम की हदों की बाउंड्री नहीं बनी थी, यानी मस्जिद हराम के अलावा हरम की हद तो दूर दूर तक फैली हुई है, तो हरम की हदों की जब बाउंड्री नहीं थी, जैसे कि इस वक्त आप जब जिद्दा से आगे जाएंगे तो कुरान शरीफ वाला रियाल रोड के ऊपर आता है, बस वहां से हरम की हद शुरू होती है, तो हरम की हद तो दूर दूर तक फैली हुई है। तो अभी तो गवर्नमेंट ने हरम की हदों की बाउंड्री बना दी, जालियां नेट लगा दी, बास जगह दीवारें बना दी, पहले ये बाउंड्री नहीं थी। तो कहा मशहूर था कि जंगल में कोई शिकारी किसी जानवर का शिकार करने के लिए जावे, जैसे कि हिरन वगैरह, तो हिरन भी शिकारी के पंजे से बचने के लिए दौड़कर हरम की हद में आ जाते थे। उनको भी मालूम रहता था कि यह हरम की हद है, यहाँ कोई हमारा शिकार नहीं कर सकता। हरम की हद में वो दौड़ करके आ जाते थे। खैर ये तो पुराने जमाने की बात थी। तो अब रहा, बादशाह का बड़ा हाथी बैठ गया, लोहे का, आयन का, स्टील का आंकड़ा लाया गया, उसके नाक में डाल दिया, फिर भी वो हाथी खड़ा नहीं हुआ। कैसी अल्लाह की कुदरत। फिर हाथी चलाने वालों ने उसको यमन की तरफ वापिस रिटर्न ले जाने की कोशिश की, तो हाथी फौरन खड़ा हो गया। सीरिया की तरफ, शाम की तरफ चलाना चाहा तो चलने लगा। मशरिक, पूर्व दिशा में चलाना चाहा तो चलने लगा। फिर अखीर में दोबारा मक्का की तरफ चलाने लगे तो फिर बैठ गया। देखिए अल्लाह ताला की अजीब और गरीब कुदरत। गर्ज वो हाथी आगे चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। अब रहा बादशाह परेशान, अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या किया जावे। इतने में एक अजीब सूरत हाल हुई। दरिया की तरफ से, समंदर की तरफ से हवा में उड़ते हुए परिंदों की कतार आती हुई नजर आई। परिंदों की लाइन नजर आई। बहुत सारे परिंदे नजर आए। हर एक परिंदे के साथ तीन कंकर थे, एक चोंच में और दोनों पैर के पंजे में एक एक पकड़े हुए। और वो कंकर कितने छोटे थे, चना होता है, चने की साइज में। बात किताब में है कि मसूर की जो दाल होती है उसकी साइज के अंदर। और ये ऐसे परिंदे थे कि इससे पहले कभी नजर नहीं आए। कबूतर से छोटे थे और इनके पंजे लाल लाल रंग के थे। और ये परिंदों ने आकर के अबरहा बादशाह का लश्कर जहां था वहां खुली हवा में, फिजा में, बादलों की तरफ, आसमान के नीचे, पूरे लश्कर के ऊपर छा गए, पूरे लश्कर को कॉर्डन कर दिया और जितनी कंकरियां थी उनके पास वो उन्होंने ऊपर से डालना शुरू कर दी। ये छोटी छोटी कंकर जिस सिपाही के सर के ऊपर पड़ी, सर फोड़ दिया, पूरे बदन के अंदर घुस गई और घुस करके जमीन के अंदर चली गई। अंदाजा लगाओ कि छोटी कंकर सर पे पड़ी, बदन में घुसी, नीचे गिरी और जमीन के अंदर चली गई और पूरे लश्कर वालों को कंकर के जरिए से हलाक कर दिया। लोग जान बचा करके भागने लगे, एक हाथी रह गया, वो भी कंकर के जरिए हलाक हो गया। कुछ सिपाही मर गए, कुछ सिपाही इधर उधर भागे, रास्ते में मरे। अल्लाह सुबहानहु व ताला अब्रहा बादशाह को सख्त सजा देना चाहते थे, इसीलिए फौरन उसको मौत नहीं आई। देखो खुदा की ये भी कुदरत होती है कि बाज लोगों को अल्लाह ताला इबरत बनाते हैं, तड़पा तड़पा करके मारते हैं, दुनिया के लोगों के लिए इबरत बनाते हैं। तो अब रहा बादशाह के बदन के अंदर जहर लग गया, अजीबो गरीब जहर लग गया, उसके बदन के तमाम जोड़ सड़ने लगे, बदन के पार्ट्स आजा टूट टूट करके गिरने लगे और इसी हालत में, बीमारी की हालत में उसको वापिस यमन लाया गया। जब सना पहुंचा तो उसके पूरे बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो भी मर करके खत्म हो गया। अब्रहा का जो बड़ा हाथी था, उस हाथी को चलाने वाले जो दो हाथी बांध थे वो मक्का में रह गए, लेकिन दोनों को अल्लाह ने ये सजा दी कि दोनों अंधे अपाहज लूले लंगड़े हो गए। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मैंने बचपन के अंदर उन दोनों को देखा है, वो दोनों अंधे थे, अपाहज थे, लूले लंगड़े थे। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने उन दोनों को देखा है बचपन में कि वो मदीना मक्का के अंदर भीख मांगते थे और लोगों के घर घर घूमते फिरते थे। कैसा अजीब अल्लाह ताला ने उन लोगों का बुरा अंजाम किया। अल्लाह आपको और मुझे मक्कतुल मुकर्रमा ले जाए, बार बार ले जावे, बार बार मक्का मदीना की जियारत अल्लाह ताला अपने फजल और करम से नसीब फरमाए। वहाँ मक्का में जो जियारत करवाते हैं तो जब अरफात और मुजदलिफा की तरफ ले जाते हैं तो वहाँ ले जाकर ये जगह भी बतलाते हैं कि यहाँ हाथी वालों का लश्कर आया था और रुका था और इस जगह के ऊपर उन पर कंकर बरसे थे। अल्लाह ताला ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके इस सूरत के अंदर ये बात इरशाद फरमाई, अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। देखो कितना प्यारा अंदाज अल्लाह ताला ने यहाँ आयत में बयान फरमाया। हालांकि इस किस्से के वक्त हुजूर दुनिया में मौजूद नहीं थे, हुजूर की पैदाइश से पहले का ये किस्सा है, इसलिए हुजूर आंख से देखने वाले तो थे नहीं, उस वाकये को आपने देखा नहीं, लेकिन वाकया इस अंदाज में अल्लाह ने बयान किया जैसा कि हुजूर के सामने है वो वाकया। और हकीकत बात यह है कि अल्लाह ताला जो बात बयान फरमावे वो हमारी आंख से देखी हुई बातों से भी ज्यादा यकीनी हुआ करती है। फरमाया أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ। देखो देखो अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ कैसा मामला किया, कैसा अजाब उनके ऊपर बरसाया। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। अल्लाह ताला ने उनकी सारी प्लानिंग, सारी तदबीर बर्बाद कर दी, गलत कर दी, बेकार कर दी। وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ। और उनके ऊपर परिंदों की टुकड़ियां भेजी, परिंदों की जमात भेजी। تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ। सिज्जील कहते हैं वो मिट्टी जिसको आग में पकाई जाती है, जैसे कि हमारी यहाँ ईंट रोड़े ठिकरे वगैरह, और ये मिट्टी की छोटी छोटी कंकरियों ने वो काम किया जो इस जमाने में गोली भी नहीं कर सकती। ये अल्लाह की कुदरत की बात थी कि इनको अल्लाह ताला ने हलाक और बर्बाद करके खत्म कर दिया। تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ। जानवरों को जो भूसा और दाना खिलाते हैं उसमें बिखरे हुए तिनके होते हैं, अलग अलग घास होती है, आपने देखा है। लेकिन जब उसको कोई जानवर चबा के खा लेता है तो फिर तो वो बिल्कुल बारीक बारीक चूरा चूरा हो जाता है। किसी जानवर वाले के यहाँ जाके देखो तो समझ में आ जावे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन हाथियों को साथ लेकर हमला करने वाले के लश्कर को अल्लाह ताला ने ऐसा पीस के खत्म कर दिया, ऐसा पामाल कर दिया कि जैसे कि खाया हुआ घास चारे का भूसा और उसके रेजे और उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ऐसा अल्लाह ताला ने उनको कर दिया। देखिए कैसी बात हो गई। इस किस्से की बरकत से कुरैश की इज्जत पूरे अरब के अंदर बढ़ गई। ऐसे भी पहले जमाने से लोग कुरैशियों की इज्जत करते थे, लेकिन इस किस्से के बाद कुरैश की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। लोग ये मानने लगे कि ये कुरैशी लोग अल्लाह वाले लोग हैं, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उनके दुश्मनों को हलाक कर दिया। और फिर पूरे अरब में कुरैशियों की इतनी इज्जत होती थी, इतनी इज्जत होती थी कि कुरैशी लोगों को कोई छेड़ता नहीं था, कोई इनको मारता नहीं था, कोई उनके काफिले को लूटता नहीं था। बल्कि उस जमाने के अंदर जब कोई दूसरा खानदान तिजारत के लिए कहीं जाना चाहे तो कुरैश खानदान को में से किसी को भी साथ लेके जाते थे, इसलिए कि वो जानते थे कि अगर कोई कुरैशी खानदान का आदमी होगा तो उसकी बरकत से हमारे तिजारत के काफिले की हिफाजत होगी। अगर कोई कुरैशी आदमी न मिलता तो आखिर में एकाध बच्चे को भी साथ में ले जाते थे, इतनी ज्यादा कुरैशियों की इज्जत थी। इसीलिए आप देखिए कुरान में अल्लाह ने एक जगह कुरैशियों को ये नेमत याद दिलाई, وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, कि अतराफ में सब जगह लोगों को किडनैप किया जाता है, उठा लिया जाता है, अपहरण किया जाता है, अगवा किया जाता है। लेकिन अल्लाह ने काबा की बरकत से कुरैश की हिफाजत फरमा ली, तो अल्लाह सुबहानहु व ताला कुरैशियों को वही नेमत याद दिला करके ईमान की दावत दे रहे हैं जो बाद में आने वाली सूरह लीला फी कुरैश के अंदर है।